ओम शांति। लेकिन ऐसे लगा और ऐसे लग रहा है कि हम जैसे छोटे से परिवार में बैठे हैं, भले बैठे हैं हार्मनी हॉल में जहां इतनी अंदाज में भाई बहन बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी भावना पैदा कर दी कि हमें ऐसे नहीं लगे कि हम दूर दूर बैठे हैं, और ऐसे लगे कि हम अपने परिवार के बीच में बैठे हैं। तो हमारा भी भाग्य है कि आज हमें आप सबसे मिलने का मौका मिला। वैसे अचानक ही भारत आना हुआ 2 सप्ताह पहले, सोचा नहीं था कि आप सबको मिलेंगे। बाबा के बच्चे, परिवार की भासना, चाहे हम बाबा के बच्चों को पहली बारी मिल रहे हैं या पहली बारी इस कल्प में, तो भी ऐसे लगता है कि पुराना सदियों का संबंध। और क्यों ऐसी भासना आती है? हमारी दृष्टि, जितनी जितनी हमारी दृष्टि बाबा की याद से, बाबा के प्यार से आत्मिक स्थिति रहती है दृष्टि में, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि अनजान व्यक्ति के सामने हम हैं। दृष्टि से ही ऐसा अनुभव होता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। तो आज हमें ऐसी ही भासना आ रही है। तो आज पहले, सबसे पहले मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहती हूं, क्योंकि हमारा विषय आज है याद और दुआएं, सुरक्षा कवच। हम सभी चाहते हैं, कलयुग में, वैसे तो हम संगम युग पर हैं, हमारी मन की स्थिति, हमारा जीवन संगम युग में है, लेकिन हम जानते हैं कि बाहर की दुनिया में कलयुग है, और साथ साथ हम परिवर्तन मार्ग पर चल रहे हैं। परिवर्तन मार्ग पर चलते चलते, कोई भी मार्ग पर चलते हैं तो संभल के चलना पड़ता है, और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए भी ध्यान रखना होता है कि हम सलामत, सुरक्षित अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचे और सहज रीति से पहुंचे। अगर बीच बीच में रुकावट आ जाए, बीच बीच में मुश्किलातें आ जाए, और उन मुश्किलातों से हम अपने आप को नहीं बचा सके या अपनी मन की स्थिति नहीं बना के रख सकते हैं, तो फिर फाइनल उस स्थिति पर पहुंचने में समय लगता है, और हमारे पास समय बहुत कम है। तो मुझे याद है, मैं समझती हूँ 1991 का साल होगा, दादी ने अचानक मधुबन बुलाया। बचपन से ही, ज्ञान के बचपन से ही मधुबन से बहुत ही प्यार रहा है, तो दादी ने अचानक ही मधुबन बुलाया, और उन दिनों में दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। दादी की तबीयत बहुत ही कमजोर थी, और मैं समझती उस समय था जब दादी ने तो ऐसे ही समझा था चली जाएगी। सो जो भी अपनी वस्तु थी, जो भी अपना सब सामान था, दादी ने किसी न किसी को दे भी दिया वहां तक। फिर दादी ने हमको अचानक बुलाया। मुझे याद है 15 जनवरी थी 1991, और हमें भी 18 जनवरी पर मधुबन पहुंचने का बहुत ही शौक था। उन दिनों में हम नौकरी भी करते थे, तो दादी ने बुलाया। लेकिन फ्लाइट बुक करने के बाद दूसरे दिन ही गल्फ वॉर डिक्लेयर हो गया। फ्लाइट तो चल पड़ी, लेकिन वातावरण सब जगह पर बहुत ही भारी हो गया। सब कहने लगे क्या होगा, आपकी फ्लाइट जाएगी, अगर जाएगी तो भी मिडल ईस्ट से जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप पहुंच पाएंगी या नहीं भारत में। लेकिन मुझे अभी तक याद है वो घड़ी, मैं बाबा के सामने बैठती थी तो मुझे ऐसा ही संकल्प आता था, कुछ नहीं सोचो, आप चले जाओ। अगर बाबा के सामने से फिर बाद में और कुछ मैं अपनी बुद्धि चलाती थी तो और बहुत सारे संकल्प आते थे, नहीं जाना चाहिए, यहां भी बहुत कारोबार है, आप कैसे छोड़कर ऐसे जा सकती हैं। बुलावा आया दादी का, लेकिन दादी के बुलावे के साथ साथ ऐसी भावना आ रही थी कि हमारी भावी कहो, बाबा कहो, हमारा भाग्य कहो, वो भी हमें साथ साथ बुला रहा है। अभी तक मुझे याद है, जब से मैंने अपनी बुद्धि चलाना छोड़ दिया और ये जो वासना आ रही थी बाबा से, आपको जाना ही है, आप निश्चिंत होकर जाओ, वो संकल्प मैंने स्वीकार कर लिया, तो कोई भी डर की बात नहीं। बहुत कुछ बातें आई रास्ते में, एयरपोर्ट पर जाने के बाद वो लोग कहने लगे तुम्हारा तो कोई बुकिंग ही नहीं है, तुम फ्लाइट में नहीं बैठ सकती हो। तो लंदन की फ्लाइट में फिर आखिर बैठ गए, फिर दिल्ली आए तो दिल्ली वाले भी ऐसे कहने लगे, फिर लाइट फ्लाइट में बैठे, फिर फ्लाइट रुक गई, फिर कहते फ्लाइट नहीं जाएगी, बहुत कुछ ऐसी बातें आई। फाइनली अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ी। अभी तक याद है रात्रि का, मैं समझती हूँ रात्रि के समय हम अहमदाबाद पहुंचे और आबू रोड पहुंचे। मधुबन के भाई हमको लेने के लिए आए और उन दिनों में आदिवासी लोग जो हैं वो बहुत ही तंग कर रहे थे, मारामारी करते थे और लूटते थे, और उनका तरीका था कि रास्ते में कुछ रख देते थे तो आपकी गाड़ी रुक जाए, अगर आपकी गाड़ी रुक जाए तो रोकने के बाद वो लूटते थे। तो हमारी गाड़ी आबू तक आने लगी, तो अभी 5 ही मिनट कुछ हुआ था और गाड़ी चली, फिर रास्ते में उन्होंने कुछ रख दिया था और फिर हमारी गाड़ी पर पत्थर मारा। तो जिस जगह पर मैं बैठी थी आगे, उसी जगह पर विंडस्क्रीन पर उन्होंने पत्थर मारा, तो विंडस्क्रीन तो सारी स्मैश हो गई और मेरे चेहरे पर कांच लग गए, यहां से कांच अंदर गया, मुंह में आया, खून बहने लगा, मुझे पता नहीं चला क्या हो रहा है। सब इस लेफ्ट साइड पर से बहुत सारे कांच ऐसे लगे, फिर भी अंदर से मुझे एक संकल्प नहीं चला, क्योंकि यही संकल्प रहा और यही फीलिंग रही कि बाबा मुझे बुला रहे हैं और बाबा मेरे साथ हैं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। और भूल से भी ऐसा संकल्प नहीं चला कि अगर मैं नहीं आती तो ये सब नहीं होता। ऊपर आए तो दादियों ने, बड़ी दादी ने, मुझे अभी तक याद है, और दादी जानकी ने इतना प्यार से वेलकम किया, तो लगा भी नहीं कुछ हुआ। लेकिन वो 10 दिन मैं जब मधुबन में रही तो एक सेकंड नहीं था जब मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि बाबा मेरे साथ नहीं है। ऐसा ही लगा मुझे कि बाबा बिल्कुल मेरे साथ साथ हैं, न सिर्फ साथ साथ हैं लेकिन जो भी मेरे संकल्प चलते हैं, जो चल रहे हैं, ये सब संकल्प जैसे बाबा ही मुझे ये संकल्प मेरे मन को चला रहे हैं। ऐसे भासना आ रही थी बाबा जैसे मुझे कह रहे, यहां जाओ, ये करो, अभी दादी के पास जाओ, अभी फलाने जगह पर जाओ, अभी इसको मिलो सचमुच। और वो जो मेरा अनुभव रहा 10 दिन का, वही अनुभव है जो आज तक मैं कहूंगी कि मेरे को ज्ञान में चला रहा है। परमात्मा के साथ संबंध, इंग्लिश में कहेंगे बॉन्ड, इतना गहरा बॉन्ड जो जैसे माँ बेटे का, माँ बच्चे का संबंध होता है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। माँ बेटे को देखेंगी या माँ बच्चे को देखेंगी, बच्चे माँ को देखेगा, तो उसको जैसे एकदम ऐसी भासना आती है अपनेपन की। तो कई सारी बातें आई, लेकिन ये जो संबंध हमारा है, ये संबंध ही आज भी याद करते अच्छा लग रहा है। कि हम, पता है ना, हमारा मन ऐसे होता है बीच बीच में हम भूल जाते हैं कई ऐसी बातें। तो ये याद करते, आज कितने साल हुए, 20, 23, 30 साल होने पर है अभी। फिर अभी भी मेरे मन के सामने जैसे अभी अभी ये संकल्प या अभी अभी का अनुभव है, अंदर की फीलिंग्स जैसे अभी अभी की हैं। तो मैं समझती हूं बाबा की याद, वैसे याद जब कहेंगे तो जनरल याद भी कह सकते हैं बाबा की याद, लेकिन हमारी याददाश्त के ऊपर याद, मेमोरीज। याद किसको करते हैं हम? जिसके लिए हमारे पास मेमोरीज हैं, जिसके लिए हमारे पास याददाश्त हैं। बाबा हमें मेडिटेशन नहीं सिखाते हैं, आपको पता है ना। बाबा हमें योग नहीं सिखाते हैं, बाबा हमें क्या सिखाते हैं? याद। और याद करना, क्योंकि याद जो अंदर है अपने अनुभव में है, उसको ही हम याद कर सकते हैं। तो हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि याद के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। मुझे याद है, एक्चुअली शिव जयंती के दिन ही थे, क्योंकि याद इसलिए अभी आ रहा है क्योंकि उन जब ये प्रश्न मैं दादी जी को पूछा था, दादी कुमार का को, तो म्यूजियम में हम थे, झंडा लहराने के लिए गए थे, इसलिए अभी याद आया। मैंने दादी जी को पूछा, दादी आप बाबा को कैसे ऐसे हमेशा याद रखते हो? तो दादी ने एक सिंपल बात बताई। दादी ने कहा, मैं हमेशा समझती हूं कि बाबा मुझे याद करते हैं, तो कैसे हो सकता है कि मैं बाबा को याद न करूं? बाबा मुझे याद करते हैं। तो ऐसे नहीं कि दादी अपनी पर्सनल कुछ सिर्फ बात बता रही थी, हम सब के लिए बाबा हमें कितना याद करते हैं। कौन सी बातें हम अपने अंदर देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे, जिससे हमें भासना आती है कि बाबा हमें याद करते हैं। और ब्राह्मण जीवन में आना, आत्म अभिमानी स्थिति बनाना, राज योग सीखना, माना हमारी जीवन एकदम सूक्ष्मता में चली जाती है। जो बातें लोगों के लिए देखना मुश्किल है, सुनना मुश्किल है, टच करना, टेक्सचर, कलर, टेक्सचर को देखना मुश्किल है, ये बातें हम अपनी स्मृति से, ये सूक्ष्म बातें हमारे जीवन में नेचुरल हो जाती हैं। और सारा हम, आप देखेंगे कि जितना जितना हमें ये, हमारा ये पुरुषार्थ चलता है, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, और मेरे जीवन का लक्ष्य ही है याद, लेकिन नेचुरल याद। ऐसे नहीं हमको कुछ पुरुषार्थ करके याद करना, लेकिन ये दिल की बात है, सिर्फ हमको स्मृति लाने की बात है। मैं जब कह रही हूं कि बाबा का मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे बाबा मेरे साथ साथ हैं, तो स्मृति है तब अनुभव है कि बाबा मेरे साथ हैं। मैं हूं आत्मा, बाबा हैं परमात्मा, जिनके साथ मेरा सदाकाल का संबंध है। और सूक्ष्मता में जाना, सटलिटी में जाना, माना हमारे जो सूक्ष्म अनुभव का वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन काम करते हैं, हमारे संकल्प के वाइब्रेशन काम करते हैं। स्थूल में हम कभी व्यस्त हो जाते हैं देखने में, लेकिन ये स्थूल की बात नहीं है। अगर हम याद और दुआएं इनों को सुरक्षित रहने का कवच समझते हैं, तो याद जैसे स्मृति की बात है, याद कॉन्शियसनेस की बात है, और जिस कॉन्शियसनेस से हमारे पूरे, हमारे कण कण में, हमारे शरीर के अंदर भी ये वाइब्रेशन पहुंचते हैं, वाइब्रेशन है। जितनी जितनी याद की, याद के की शक्ति हमारे अंदर भरती जाती है, तो जैसे जो बातें विजिबल हैं, देखने वाली हैं, वो बातें इनविजिबल हो जाती हैं, और जो इनविजिबल बातें हैं वो विजिबल हो जाती हैं। जो बातें, जो जो चीजें देखने की हैं वो हमें नहीं दिखाई देती हैं, और जो जो बातें नहीं देख सकते हैं वो बातें हम देखना शुरू करते हैं। याद से हमारी सुरक्षा कैसे होती है, तो वैसे कहा जाता है कि ज्ञान माना या तीसरा नेत्र खुलना माना, ज्ञान हमें मिल गया, यानी कि ज्ञान की समझ मिल गई। तो एक है बुद्धि से ज्ञान की समझ, लेकिन तीसरी दूसरी बात है वो बुद्धि से भी परे अंतर्ज्ञान, यानी कि इंट्यूशन। जितनी हमारे में, हमारा मन याद से साइलेंस में जाता है, जितनी हमारी बुद्धि एकाग्र होती है और साफ होती है, उतना उतना जो बातें आने वाली हैं उन सब बातों का पहले से ही हमको जैसे भासना आती है। दादी कहती थी कि कई बार बाबा की याद में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना मस्त हो जाते हैं, तो ये आंखें भले बंद हैं लेकिन ऐसे लगता है कि भविष्य की सब बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, एक साल के बाद होने वाला क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, ये सब हमें पता चल जाता है। पता ऐसे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नहीं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन भासना ये आती है कि हमें पता है जो होगा वो ठीक ही होगा और अच्छा ही होगा। और इस ये स्मृति जब हमारी गहरी होती जाती है, तो अगर कुछ ऐसी भी बात होगी जिससे हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है, वो बातें हमने हमको पहले से ही पता चल जाएगा और उसकी तैयारी भी हम कर सकेंगे, क्योंकि हमको पहले से ही पता चलता है। ये भी एक प्रकार की पवित्रता की निशानी है। बाबा की याद, परमात्मा की याद, खुद की याद। खुद की याद किस बात की? ऐसे नहीं भी हम अभी जो है ये हम अपने आप को याद करते हैं, लेकिन हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, और वो भी बुद्धि से सिर्फ नहीं, लेकिन ये हमें आज भास ना आए। आज भी बाबा ने कहा ना, पवित्रता से ये भासना आती है कि हम कौन हैं, हम देव आत्मा हैं। देव आत्मा माना देने वाले। तो ये भासना जो हमारी है, ये भासना और जो भी हमारी नेगेटिव बातें हैं, उन सब से हमसे हमें सुरक्षित रखती हैं। तो सुरक्षित भय की बातें नहीं, सिर्फ बुरी बातों से हम सुरक्षित नहीं रहते हैं, वो तो ज्ञान के बाद सब कुछ अपने आप हो जाता है। सुरक्षित किस बात के? हमारी बुराइयों से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, हमारी कमजोरी से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। हैं, जानते भी हैं हमारे में ये हैं, लेकिन ये जो कमजोरी है उसको हमें यूज नहीं करना है। अगर आएगी भी तो पहले से ही भासना आएगी कि ये कमजोरी अभी आ रही है या दिखाई दे रही है, इसका उपयोग हो सकता है। तो सूक्ष्मता से देखा जाए तो ज्ञान हमें सुरक्षित रखता है। जितनी जितनी ज्ञान का विचार सागर मंथन हम करते हैं, तो न सिर्फ हम सुरक्षित रहते हैं लेकिन हम औरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हमने दादी से यही अनुभव किया, सुभाष भाई सुना रहे थे और दादी को ये अच्छा लगता था। आजकल न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन रोज दादी के बारे में क्लास कराती हैं, आप भी सुन सकते हो, यूट्यूब में उनका क्लास होता है रोज रोज। न्यूयॉर्क शाम के समय क्लास कराती है, यहाँ सुबह का अमृत वेले के बाद होता है लाइव, तो हम सुनते हैं। तो दादी, तो मोहिनी बहन दादी की बातें सुना रही हैं और आज कल शाम को ये टॉपिक चल रही थी कि कैसे दादी को कौन सी बातें अच्छी लगती थी कि जो हम ज्ञान के प्रश्न दादी को पूछे। क्यों? क्योंकि उनसे बुद्धि चलती है, ज्ञान के हिसाब से बुद्धि चलती है। कभी प्रश्न हम प्रश्न उत्तर दादी से बहुत करते थे, इसलिए दादी को अच्छा लगता था। हमारी लेन देन भी साधारण लेन देन नहीं होनी चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है, कोरोना का लेटेस्ट न्यूज क्या है, ट्रंप का समाचार क्या है, ये सब समाचार की लेन देन हमारे लिए लायक नहीं है। इन बातों से भी अपने आप को सुरक्षित रखना तब होगा जब हम ज्ञान की बातों के लिए इंटरेस्ट रखेंगे। उससे बुद्धि रिफाइन होती जाती है और हमारी बुद्धि का विचार अलग प्रकार से चलता है, लौकिक या भौतिक रीति से नहीं चलता है। अगर हमारे सामने भौतिक रीति से सोचने वाले होंगे, हम उनके जैसा सोचेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम धोखा खा लेंगे। जितनी जितनी बाबा की याद से, ज्ञान के विचार सागर मंथन से, हम जो सामने बात है उसके पीछे क्या है, रहस्य क्या है, आजकल क्या जमाना चल रहा है, जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, जो इन आंखों से देख रहे हैं, जो इस बुद्धि, ये लौकिक बुद्धि से हम देखते हैं और जो हमें दिखाई देता है, हम उसका विचार सागर मंथन करते हैं और उसके लिए अपना ओपिनियन देते हैं, ये नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो, इसके पीछे क्या रहस्य है वो समझना, इससे हम अपने आप की रक्षा कर सकेंगे। हम अगर ऊपर ऊपर की बातें ही देखेंगे तो जरूर धोखा खा लेंगे। और हमें कब पता चलता है पीछे क्या है? जब हमारे बुद्धि में ज्ञान, जैसे बाबा कहते हैं ना, टपकता है, ज्ञान की बातें हमारे बुद्धि में चलती रहती हैं, तो हम जो ऊपर ऊपर की बातें हैं वो नहीं देख के इसके सार में जाएंगे, सार का पता चलेगा। और सार का पता होने से हम अपने आप को न्यारा बना सकेंगे और इस न्यारेपन से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। जब तक न्यारापन नहीं है तब तक हम अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते हैं। और न्यारापन साथीपन से आता है। तो भले एक कहेंगे याद, लेकिन याद के बहुत सारे रूप हैं। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना, ये भी ज्ञान का रूप है। श्रीमत पर चलना, ये भी एक ज्ञान का रूप है, क्योंकि श्रीमत पर चलना माना बाबा के साथ हम आज्ञाकारी बनकर रहते हैं। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो हम किसकी याद में हैं? बाबा की याद में हैं। अपनी भी याद में है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। ये याद भी कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। अगर ये हमारा लक्ष्य हमारे सामने होगा तो ये जो धोखा देने की बातें आती हैं उसको हम तुरंत समझ लेंगे, तुरंत जान लेंगे और अपने आप को बचा लेंगे। तो ये जो बातें हैं वो जैसे कि ये मशीनरी चलती हैं, आत्मिक स्थिति से, बाबा की याद से, हमारे पाठ की याद से एक मशीनरी चल रही है। ये मशीनरी का राज हमें पता चलता है और इस राज को समझ के हम उसमें फंस नहीं जाएंगे। और फिर दूसरी बात ये भी है, इन सब बातों से हमारा जो औरों के साथ व्यवहार है वो भी अपने अनुभव अनुसार होगा। दादी ने एक बारी बताया कि जो गुण हम बाबा का याद में अनुभव करते हैं वो गुण जैसे हमें बाबा वर्षे में देते हैं। तो आप इसका थोड़ा पर अपना चेकिंग करना। याद में बैठे हैं तो याद में बैठे बैठे भी कौन सा गुण हम अनुभव कर रहे हैं? प्रेम का सागर, शांति का सागर, क्षमा का सागर, रहम का सागर। तो जब हम मुझे ये अनुभव होता है कि बाबा मेरा रहम करने वाला है तो ये रहम का अनुभव मुझे उसको भी टर्न करके मैं औरों के लिए भी कहां तक रहम दिल बनी हूं या बनाऊं। ये हमें अपने आप ये कुछ अपना तरीका अपनाना होगा। एक तरीका ऐसे नहीं अपने आप हो जाएगा। हम याद में बैठते हैं तो हम विशेष इस बात का ध्यान देते हैं कि बाबा की याद है जो मैं अनुभव कर रही हूं इस करी, ये मेरे शरीर में भी, मेरे तन में भी ये याद के वाइब्रेशन पहुंचे और इसकी असर शरीर पर पड़ने से शरीर के वाइब्रेशन भी बदल जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, प्रकृति की सेवा करो। वैसे प्रकृति बाहर नहीं, ठंडी गर्मी सर्दी ये तो है ही, सबसे पहली मेरी ये प्रकृति है। तो इस प्रकृति की सेवा माना, ये वाइब्रेशन जो मैंने अपने में फील किए, जो मैंने अनुभव किए, ये वाइब्रेशन इसमें भी आए। और इससे क्या होता है, वैसे कहा जाता है कि अगर कोई भी आदत आपके शरीर आपके 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 पास है, कोई भी आदत है, खाने की, पीने की, चलने की, उठने की, बैठने की कोई भी आदत है, वो न सिर्फ मन में है, न सिर्फ आत्मा में है, न सिर्फ संस्कार में है, लेकिन वो संस्कार अपने शरीर में भी हैं। आपने अनुभव किया होगा कि कई बार कुछ आप आदत होती है ना कुछ करने की, यानी रूटीन बन जाता है, कुछ करने का सिस्टम बन जाती है आपके जीवन में, डेली रूटीन बन जाती है, तो आप करेंगे ना तो आप 10 मिनट के बाद सोचेंगे मैंने ये दरवाजा बंद किया या नहीं। आदत अनुसार आप उठ के टाइम अनुसार दरवाजा बंद कर देंगे, लेकिन 10 मिनट मैंने दरवाजा बंद किया या नहीं, ये तो एकदम साधारण बात है। लेकिन वो शरीर को भी आदत पड़ गई समय पर उठ के जाके कुछ करना। इसी प्रकार से हमारे जो संस्कार के भी वाइब्रेशन है वो शरीर में बैठे हुए हैं, और आपके न चाहते हुए भी ये संस्कार आपसे काम लेंगे, शरीर द्वारा ये आपसे काम लेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही सूक्ष्म पुरुषार्थ है कि हमें वाइब्रेशन अपने शरीर के भी, इस प्रकृति के भी चेंज करने हैं। वहां तक हमारे में शुद्धता आनी चाहिए। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है एक्चुअली। दादी भी जब कई बार सुनाती थी कि हमारे याद जब बाबा की बनती है ना तो हमारे श्वास लेने का तरीका भी बदल जाता है। श्वास भी एक निर्मल, सॉफ्ट, सरीन बन जाता है, जेंटल। ये श्वास हमारा ऐसे जब बदल जाता है तो इसकी असर आत्मा के ऊपर भी पड़ती है, और आत्मा की असर ये श्वास के ऊपर भी पड़ती है, क्योंकि ये श्वास भी प्राण है ना। वैसे आत्मा में जब जीव होती है तो कहते हैं आत्मा में प्राण है, तो जीव को भी प्राण कहते हैं और श्वास को भी प्राण कहते हैं। श्वास और ये जीव दोनों का आपस में गहरा संबंध है, और जितनी अलाइनमेंट, जितना ये आपस में मिल के चलते हैं, उतना हमारे जीवन में भी हर बात से हम मिलते जुलते चलते हैं, हर बात को समझ के, हर व्यक्ति को समझ के, हर संबंध को हम समझ के चलेंगे, जिस कारण से हमारा संबंध, हमारी लेन देन, उसकी सुरक्षित लेन देन होगी। और इस प्रकार के संबंध से हम दुआएं के प्राप्त होते हैं। मोटे रूप से सेवा करना वो तो है ही, मोटे रूप से हम किसी के लिए कुछ करते हैं वो है ही, और वो भी करना है, लेकिन ध्यान हमारा इस बात पर जाना चाहिए हमने किस भावना से, किस इरादे से किसी की सेवा की। एक्चुअली सच्ची भावना, जब हम भावना से हम सेवा करते हैं तो वो सेवा स्थूल बात से तो हुई, हमारे कर्म से तो सेवा हुई, लेकिन वो वाइब्रेशन है उससे जो सेवा हुई उस व्यक्ति की, वो वाइब्रेशन वो कभी नहीं भूलेंगे। एंड एक्चुअली वो वाइब्रेशन जो है वो हमारे लिए दुआ बन जाते हैं, वो वाइब्रेशन एक प्रकार का कवच बन जाता है। दादी ने बहुत ही अच्छा, मैं हिंदी शब्द ढूंढ रही हूं, डोनेशन एंड चैरिटी, पुण्य, पुण्य कर्म और दान, दैट्स इट, दान, पुण्य कर्म और दान, इसमें फर्क क्या है? दान तो कोई भी करेगा, बेचारा गरीब भी होगा ना तो वो कहेगा मेरी इतनी कमाई है इसमें से इतना निकाल के मैं दे देता हूं, ये हुआ उसका दान। लेकिन पुण्य कर्म किसको कहेंगे? हाँ, वो दान भी हो सकता है, लेकिन अपने लिए हम त्याग करके किसी को देवे उसको कहेंगे पुण्य कर्म। अपनी पीठ से उतार के स्वेटर कोई बेचारा ठंडी में मर रहा है उसको देंगे उसको कहेंगे पुण्य। अपने त्याग से हम किसी की सेवा कुछ करते हैं उसको कहेंगे पुण्य। अगर हम इस प्रकार से पुण्य कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म दुआ में बदल जाता है और वो दुआ एक कवच बन जाती है। और इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कभी जरूरत पड़ेगी कोई भी बात की कोई भी चीज की, हो नहीं सकता है कि हमें नहीं मिले। हम इच्छा नहीं रखेंगे कि मैंने किया था इसलिए मुझे मिलना चाहिए, लेकिन किसी को कहां को कहां भी टच होगा, टच कौन कराएगा? बाबा कराएंगे। तो दुआ हमारे कर्म से होती है, लेकिन साथ साथ में किस वाइब्रेशन से हम अच्छे वाइब्रेशन से अच्छे भावना से करते हैं तो उसमें बाबा का भी साथ होता है। और साथ साथ में बाबा और दुआएं, इन दोनों बात से, और ये बातें जब दोनों इकट्ठी होती है तो हमें कवच का अनुभव होता है और हमारा जीवन बिल्कुल विश्वास वाला रहेगा। कभी भी कोई बात का संशय नहीं, कल हम कहां से खाएंगे, कल हम कहां, हमको कहां से कुछ मिलेगा, कौन हमारे साथ होगा, कौन हमको संभालेगा। बाबा के घर में भी बाबा के बच्चे ही बाबा के घर को संभालते हैं, तन से मन से धन से, क्योंकि हमें पता भी है कि जितना जितना हम इस प्रकार से कोई भी इच्छा बिना इच्छा हमारा सब कुछ ऐसे इसको यूज करेंगे तो इसका रिटर्न 100 गुना भविष्य में तो मिलेगा ही, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी अभी हमें दुआएं प्राप्त होती हैं और ये दुआएं ही हमारे लिए हमें सुरक्षित रखती हैं, तन से मन से धन से। अगर कुछ हो भी गया जिससे हमें थोड़ा दुख पहुंच सके तो भी हमारे अंदर से हमें भावना नहीं आएगी या फीलिंग नहीं आएगी कि ये बात ठीक नहीं हुई या ये बात गलत हुई। तो हमारा काम है हमारे मन को साफ रखना, हमारे इंटेंशंस, हमारे इरादे को स्वच्छ रखना। दादी की फेवरेट गुण थे सच्चाई, सफाई और सादगी। सुभाष भाई ने सुनाया कि हाँ हमारे, हम सब कुछ अपने आप करते हैं अपने लिए, और हाँ विदेश में कोई ऐसी सेवा, किसी की कोई स्थूल सेवा करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। बाबा की सेवा के लिए ही हमारा बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है, जैसे बताया 70 बेडरूम्स हैं वहां पे। तो जो भी सफाई का काम है और भी जो 50 एकड़ जमीन है बगीचे की, सारा काम अपने घर के भाई बहन करते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है, कोई लेबर नहीं। मेहमानों के भी इतने 100 भाई बहनों की रिट्रीट होगी तो एक बारी भी कोई खटिया पर सोएगा तो वो चद्दरें धुलाई होगी। 100 भाई बहन तो 200 चद्दरें, एक गद्दे पर और एक ऊपर ओढ़ने की, वो दोनों चद्दरें धुलाई होगी, तो घर के भाई बहन सब कुछ करेंगे। और उनको ही अंदर से आता है, क्योंकि भाषण करने वाले भाषण करेंगे, लेकिन भासना किससे आती है? भासना आती है वो जो वाइब्रेशन बनाने, वातावरण बनाने वाले जो है, जो दिल से सेवा करने वाले हैं, उनसे भासना आती है। बाबा के घर में आते हैं, इतनी स्वच्छता का अनुभव करते हैं, इतने भाई बहन प्यार से उनकी सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। भाषण करने वाले, हम तो यहाँ एक घंटा आकर बैठ के चले गए, आपको खिलाने वाले कितने, भंडारे में कितने भाई बहन हो गए, 200-300 भाई बहन हो गए, एक जन का क्या होगा? अगर आप भूखे हो और यहाँ सुनाने वाला बहुत बढ़िया बातें सुना रहा है, तो क्या होगा? पेट में बिल्लियां बोलती हैं और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं, अब बहन जी पूरा करे तो हम जाए कुछ खाए, सुनने तो सुनने का तो सुनने में ही रह जाएगा। तो सच्ची दुआएं कहां से मिलती हैं? ये सेवा से मिलती हैं। और हम भी अपने लिए यही अनुभव करते हैं कि हमारी सेवा कोई नहीं करे। ये भी देखा है, अगर कोई किसी की सेवा करता है तो कुछ न कुछ प्रकार की डिपेंडेंसी हो ही जाती है, न चाहते हुए भी डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो हमारी जीवन सच्चाई वाली, सफाई वाली और सादगी वाली। सादगी भी एक प्रकार का हमारे लिए कवच है, क्योंकि बुद्धि ज्यादा नहीं चलती है, बहुत सारी संभालने की बातें नहीं है। अभी इस बारी में आई तो हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर को खाली करना है, तो अभी मैं आई तो ऐसे मुझे सब कुछ साफ करके आना था कि मैं कहाँ जाएंगी वापस, क्या होगी, क्या करेंगी, अब मुझे पता नहीं है। क्योंकि जिस घर में हम रह रहे, रिट्रीट सेंटर की बात जो बताई, वो रिट्रीट सेंटर तो अभी रेनोवेशन हो रहा है उसका, अभी 4-5-6 माह शायद और लग जाए। तो वापस जाते समय पता है नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ वस्तु रखेंगे अपनी, कुछ नहीं। लेकिन हमारे पीछे किसी का संकल्प नहीं चलना चाहिए, ये इतना सारा छोड़ के गई, अभी कौन इसको ठीक करेगा। ये है सादगी। तो हमको था हम जाए तो हमारे लिए कोई किसी का संकल्प न चले। तो इसी प्रकार से बाबा की याद और सेवा, सेवा से हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। ये दुआएं ही कवच हैं, सुरक्षा के लिए कवच है, लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने का भी कवच है, अपनी जीवन की यात्रा को सहज बनाने के लिए भी एक प्रकार की कवच कहो, तरीका कहो, जो भी कहो, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर योग करते हैं। अभी कुछ कहना है? हाँ, तो अभी ये जो वाइब्रेशन की बात है, कितना हमारा मन एकाग्र होता है, इस एकाग्रता की स्थिति को आप न सिर्फ अपने मन में अनुभव करें, लेकिन ये समझे कि इस एकाग्रता की स्थिति से हमारा दिल भी एकाग्र हो रहा है। हमारा श्वास भी एकाग्र हो रहा है। ये सांस शरीर के लिए प्राण है। ये सांस, इसकी भी एक रिदम है, सॉफ्ट और जेंटल। आत्मा इस सॉफ्टनेस, इस जेंटलनेस में मर्ज हो जाती है। और ये हमारे सांस एक प्रकार का सांस है। ये सांस जीवन की हर परिस्थिति का साथ है। प्रकृति की भी एक प्रकार का सांस है। जैसे सांस लेते समय हमारी छाती में ऊपर नीचे होने का असर होता है, ये एक प्रकार का हमारा कनेक्शन है, आत्मा का कनेक्शन है शरीर के साथ। शांति के वाइब्रेशन, शांति की एनर्जी शरीर में ऊपर से नीचे तक हमारे शरीर के प्रकृति को शांति के एनर्जी से भर रहा है। प्रकृति के बीच में हूं, लेकिन इस शांति की किरणें जैसे मेरे शरीर को एकदम पिघला रही है। और मेरे खुद के वाइब्रेशन इस स्थान को, इस हॉल को संपूर्ण रीति से भर रहे हैं। वाइब्रेशन में
मैं खुले दिल से अपने बाबा का आवाहन करती हूं। बाबा की शुद्धता, पवित्रता, परमात्मा की लाइट और निस्वार्थ प्यार मुझे आत्मा को इसी अनुभव में डुबो रही है। जिससे आत्मा, मैं आत्मा और परमात्मा, मेरा बाबा एक। अभी पता चलता है भक्ति में क्यों कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यही मेरा अनुभव अब का जैसे शरीर में श्वास चलता है, ऐसे ही परमात्मा की याद, बाबा की याद, बाबा की वाइब्रेशन, बाबा की एनर्जी मेरे मन में, दिल में और इस शरीर में भी हाजिर नाजिर है। क्योंकि इस घड़ी संपूर्ण रीति से हम बाबा की याद में, सच्ची याद में, लीन हैं और रहेंगे।